मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने रूटीन पर आऊं, एक छोटी सी सूचना आप सबको देना चाहूंगा। सूचना यह है कि इस बार के सी सेट के पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि सी सेट का जो स्टैंडर्ड है वो काफी बढ़ा दिया गया है, और वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये बात अलग है कि जब हम समीक्षा करेंगे तो दूसरे उसके भी आयाम खुलते चले जाएंगे, लेकिन इनफैक्ट पिछले वर्ष की तुलना में सी सेट के पेपर को कठिन तो बना ही दिया गया है, और आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर चाहे आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में कितना भी स्कोर क्यों ना कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो परेशान होना तो बनता है, अगर वो परेशान है तो कोई गलत नहीं है। फिर अब क्या किया जाए? रास्ते तो तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि परेशान होना एक प्रकार से हल नहीं है। हां, रास्ते तलाश करने का प्रवेश द्वार जरूर है, और हमें इसे इसी रूप में लेकर चलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सी सेट पर एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला है, AFEIS पर डाला है। वो थोड़ा सा लंबा है। देखिए, अगर कोई भी बात आपको समझनी है तो लंबा वक्त तो लगेगा ही, और मुझे यदि कोई बात आपको समझानी है तो मुझे भी लंबा वक्त आपका लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में बात नहीं बनती है। ये तथ्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, खासकर फ्यूचर के प्रिपरेशन के लिए, आपको दिमाग में रचा बसा लेना चाहिए कि अगर आप सोचेंगे कि बात टिप्स से बन जाएंगी तो नहीं बनने वाली है। प्लीज नोट इट डाउन। हम लोगों ने सी सेट का एक वीडियो डाला है। सूचना यह है कि यदि आप सी सेट से थोड़े परेशान हैं और हाथ पैर मार रहे हैं कोई रास्ता तलाश करने के लिए, तो एक बार आप इसे जाकर सुन लें, देख लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर का जो दबाव है इस विषय को लेकर शायद थोड़ा सा कम हो और आपको रास्ता भी दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी सूचना थी। मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अभी किस विषय पर बात करूंगा यह घोषणा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विषय हैं। आपको मालूम है कि इससे पहले के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे वो अभी बाकी हैं। तो फिलहाल मैंने अभी यही फैसला किया है कि किसी तरह से उस करंट अफेयर्स को निपटा करके हम समानांतर स्थिति में आ जाएं, यानी कि बिल्कुल करंट स्थितियों तक पहुंच जाएं। लेकिन अभी जो करंट चीजें हो रही हैं उन्हें हम पीछे न छोड़ते चलें, यानी कि अभी जो करंट हो रही हैं उन्हें तो लेते ही चले, और फिर जो वक्त बच जाएगा उसमें पिछले करंट अफेयर्स को कवर करें। लेकिन खासकर जो अभी प्री एग्जाम हुए हैं, संभवतः उस पर भी बीच बीच में बातें होती रहेंगी, जैसे कि अभी मैंने सी सेट के बारे में थोड़ी सी बातें की। अन्यथा देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और हम लोग अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं कभी भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, आइए जो करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। एक दुर्भाग्यजनक घटनाओं से अखबार भरे पड़े हैं, चैनल्स भी भरे पड़े हैं। आप जानते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में जो रेल की दुर्घटना हुई है, आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है। करंट अफेयर से नो डाउट एक दुर्घटना घटी है, लेकिन विषय के तहत जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वर्गीकृत होगा। आपदा प्रबंधन, राइट? अब ये जो आपदा प्रबंधन है, ये किस तरह का आपदा रहा? तो सीधी सी बात है कि ये मैन मेड आपदा प्रबंधन है। मैन मेड यानी कि मनुष्य की भूल की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। हालांकि अभी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है कि सिग्नल की जो गलती हुई है वो मनुष्य की वजह से हुई है या इलेक्ट्रॉनिक की वजह से हुई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक की वजह से हुई, यानी कि मशीन ने अपनी ओर से गड़बड़ी कर दी और इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। दोस्तों, इस पर हम अभी विस्तार से बातें नहीं करेंगे। इसके एक दो बिंदु जो आपको खासकर ध्यान में रखने हैं, बस मैं वे बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हम रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए कि स्पीड लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वंदे भारत की ये स्पीड होगी और फलाने की ये स्पीड होगी, हम ये कह रहे हैं। उसके अनुसार ट्रैक में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो सुरक्षा के मामले में उतनी ही बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। बीच में आपने खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह से जब वंदे भारत जो ट्रेन चली, उसके चलने के दौरान पता लगा कि वो कहीं पेड़ की डाली से टकरा रही है, तो कहीं कुछ और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे होते हैं तो स्वयं पर नियंत्रण थोड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो जो सुरक्षा है, सुरक्षा और सुविधाएं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रेलवे के सामने हैं, इन्हें उसे चुनौतियों के रूप में लेना चाहिए। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, रेलवे सुरक्षा का सवाल है, लगातार कुछ एजेंसीज हैं जैसे जिसमें सीएजी भी है, सरकार से लगातार कहती रहती है कि वो सुरक्षा के मामले पर ध्यान दें, सुरक्षा के बजट को बढ़ाएं, उसकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है डेवलप करें, उसे लागू भी करें। जैसे कि कवच, ये शब्द आपने अभी अखबारों में पढ़ा होगा। कवच एक सुरक्षा है, मामला है, वो आपदाओं के खिलाफ एक कवच है हमारे लिए, लेकिन हम उसे सभी ट्रेन्स में लगा नहीं पाए हैं। बहुत थोड़े से ट्रेन्स में लगे हैं वो, जो हमारा ट्रैक लगभग 70,000 किलोमीटर हमारा ट्रैक है, उसमें से बहुत ही थोड़े से हिस्से में ही हम सुरक्षा कवच उपलब्ध करा पाए हैं। तो ये सारी वे स्थितियां हैं जो हमें खासकर आपदा प्रबंधन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा और दूसरे कामों के लिए जितनी मैन पावर की जरूरत है, तो कितने सारे पद रेलवे के खाली पड़े हैं। एक तरफ हम बातें करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, दूसरी तरफ इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं, और उसका फिर जो नतीजा है वो हमें इस तरह की दुर्घटनाओं में भुगतना पड़ता है। तो यहां जो प्रबंधन की जो समस्याएं हैं, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ये अब मायने नहीं रखता है कि जो बालासोर में दुर्घटना हुई है वो क्यों हुई है, या बालासोर में जो दुर्घटना हुई है वो बालासोर किस राज्य में है। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। और जब आप किसी भी घटना को 2-3 बार पढ़ लेते हैं, आपने रेडियो न्यूज में सुन लिया, आपने चैनल पर भी सुन लिया, आपने अखबारों में भी पढ़ लिया, आपने डेली ऑडियो लेक्चर में भी सुन लिया, तो चीज तो दर्ज हो ही जाएगी ना आपके दिमाग में। न तो उसे नोट करने की जरूरत है, और न बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, न रटने की जरूरत है। दिमाग पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। दोस्तों, अब जिस तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने अपना थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, मुझे भी अपने डेली ऑडियो लेक्चर में उसी के अकॉर्डिंगली परिवर्तन करना होगा। मैं ये परिवर्तन करने में जुट गया हूं, और आपको शायद धीरे धीरे थोड़ा बहुत महसूस भी होने लगा होगा। एक शब्द मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिला, जाम्बी स्टार्टअप। पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, जाम्बी स्टार्टअप। ये जाम्बी स्टार्टअप क्या है? देखिए, हमारे यहाँ अभी 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, स्टार्टअप। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो जाम्बी स्टार्टअप है, ये क्या है? स्टार्टअप आप जानते हैं, तो जाम्बी स्टार्टअप उसे कहते हैं जिसका कोई बहुत ही स्ट्रांग जो एक मॉडल होता है काम करने का, बिजनेस मॉडल, स्ट्रांग बिजनेस मॉडल। ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो शुरुआत कर देते हैं, काम करने लगते हैं, और जब आगे काम करने लगते हैं तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से वो जूझते रहते हैं। यह भी लगता है कि नहीं नहीं, अब इनसे नहीं जूझा जा सकता है, बहुत हम नुकसान में आ जाएंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, उन्हें कहा जाता है जाम्बी स्टार्टअप। आपने सुन लिया, मन ही मन एक बार दोहरा लीजिए और छोड़ दीजिए, बस आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को बताने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ प्रश्न आपसे किए थे, पता नहीं आपने उनके उत्तर ढूंढे कि नहीं ढूंढे। मैंने कहा था कि आप सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये कहां शुरू किया गया होगा, खासकर सर्विसेज आउटसोर्स को लेकर के, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। मैंने सिटीज का प्रोग्राम के बारे में भी आपसे प्रश्न किया था कि ये इसमें भारत का कौन सा मंत्रालय शामिल होगा, आप उसके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। और प्लीज, आपको ऐसा करना चाहिए। आप सिर्फ सोचेंगे कि पढ़ने के भरोसे बात बन जाएगी कि नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, आपको अपने दिमाग पर भरोसा करना होगा। तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूं, ये रिपोर्ट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, हमारा है, अपने देश का है। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उसने क्या कहा है कि 1990 से लेकर के 2018 तक हमारे जो समुद्र का जल स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, और सीधी सी बात है कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो कल्पना करके देखिए कि समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, या हम जिसे तट रेखा कहते हैं, जिसे कोस्टल लाइन कहा जाता है, उसकी क्या स्थिति होगी। पानी अगर बढ़ गया है तो जो अभी कोस्टल लाइन थी वो डूब जाएगी, यानी कि समुद्र फैल जाएगा, और जब समुद्र फैल जाएगा तो जमीन डूब जाएगी, जमीन कम होगी, और जब जमीन कम होगी तो जो लोग वहां बसे हुए थे वो कहां जाएंगे, वो विस्थापित हो जाएंगे। यह प्रभाव होगा समुद्र के जल स्तर के बढ़ने का। तो इसने सीधे सीधे कहा कि कोस्टल लाइन एरिया धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि समुद्र से लगी तटीय जमीन जल में समाती जा रही है। ये बात उसने कही। और सबसे ज्यादा जो क्षरण हो रहा है वह गुजरात में हो रहा है, सबसे ज्यादा क्षरण हो रहा है गुजरात में हो रहा है, और सबसे कम जो क्षरण हो रहा है वो दमन दीव में हो रहा है। ठीक है, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने ये बात बताई है। आप जानते हैं कि लगभग 6,907 किलोमीटर हमारा कोस्टल लाइन है, और धीरे 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 लगभग इसमें से 2300 किलोमीटर से अधिक तटीय इलाका समुद्र में समा चुका है। कल्पना करके देखिए, आपको ध्यान होगा कि इस तरह के प्रश्न इस साल पूछे गए हैं। तो अब बस मेरा सरल सा प्रश्न ये है कि आप उस प्रश्न को याद करने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए जो इससे मैच करता है, तभी तो आप इस तरह के रिपोर्ट के महत्व को समझ पाएंगे, तभी तो आप अगले साल की तैयारी में उस तरीके से ढल पाएंगे कि नहीं नहीं अब हमें इन पर भी ध्यान देना है। तो प्लीज, आपके पास प्री एग्जामिनेशन के पेपर हैं और उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के रिपोर्ट पर आधारित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है कि एक से ज्यादा भी प्रश्न पूछे गए हों, तो प्लीज डू दिस। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के जो विषय हम लेते हैं उसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं हर दिन की तरह, बहुत सारे ईमेल इस बार भी मिले हैं। हृदय से मैं आप सबके प्रति धन्यवाद के साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।